अध्याय 15 व्यापारिक मार्ग एवं नगर केंद्र। प्राचीन भारत में स्थल तथा जल मार्ग। भूमिका। प्राचीन भारत में आंतरिक तथा बाह्य व्यापार हेतु स्थल तथा जल दोनों मार्गों का प्रयोग होता था। सिंधु सभ्यता में व्यापारी पश्चिम में सुमेर, बेबीलोन आदि स्थानों से होकर मिस्र तक जाते थे। स्थल मार्ग के अतिरिक्त समुद्री मार्ग का भी वे प्रयोग करते थे। उत्खनन से लोथल बंदरगाह का पता चला है, जहां पश्चिम के अनेक व्यापारी पोत आया करते थे। हिंदू कुश की पहाड़ियों को पार कर ईरान होते हुए भारतीय व्यापारी मध्य एशिया तक जाते थे। इस प्रकार प्राग ऐतिहासिक युग से ही भारत में व्यापार और वाणिज्य की उन्नति का पता चलता है। यह उत्तर भारत का प्रसिद्ध मार्ग था। कश्मीर, अफगानिस्तान, कांधार से पाटलिपुत्र तक के विस्तृत भूभाग को यह मार्ग मिलाता था। इस मार्ग का पश्चिमी भाग विश्व से कैस्पियन सागर तथा काला सागर होता हुआ यूरोप तक चला जाता था। पूर्वी भाग में स्थित गांधार कोष्टक में पाकिस्तान की राजधानी पुण्यकलावती होता हुआ तक्षशिला, सिंधु, सूत्रदी और यमुना पार कर हस्तिनापुर, कान्यकुब्ज, प्रयाग, काशी और पाटलिपुत्र को जोड़ता हुआ ताम्रलिप्त बंगाल प्रदेश के बंदरगाह तक चला जाता था। इस विशाल पथ का एक मार्ग तक्षशिला और पुष्कलावती से कपीसी होकर वाहक तक पहुंचता था और वहां से पूरब तक जाता था। यहां से प्राचीन को अनेकों वस्तुएं आती थी। पश्चिम तथा मध्य एशिया के अनेक देश इस मार्ग से जुड़े थे। नंबर एक, बौद्ध युग। स्थल मार्गों का समुचित विकास बौद्ध युग में हो चुका था। विभिन्न देशों के वाणिक इन मार्गों से होकर व्यापारिक यात्रा करते थे। जातकों से ज्ञात होता है कि मगध से मिथिला, वाराणसी और कौशाम्बी तक का मार्ग प्रयोग होता था। विदेह से कश्मीर, गंधार तक व्यापारी आते जाते थे। नंबर दो, महायुग, महाकाव्य युग। रामायण तथा महाभारत में भी स्थल मार्गों पर चर्चा की गई है। रामायण में कहा गया है कि अयोध्या में विभिन्न देशों के व्यापारी निवास करते थे। नाना देशानी वासश्च वणिजाभिरुपसेवितम्। व्यापारी उस समय वस्तुओं को लेकर दूर दूर तक जाते थे। नराज के जनपते वाणिजो दूरगामी गच्छन्ति क्षेम मध्वानम बहुपन्न समाचिता। महाभारत में कहा गया है कि दमयंती अपने पति नल से बिछुड़ने के बाद सार्थ के साथ गंतव्य तक जाना चाहती थी। वह व्यापारी सार्थ के साथ सागर तक गया था। इस ग्रंथ से ज्ञात होता है विदर्भ, सौगच, कौशल राजपथों से जुड़े थे। इसके अलावा भीष्म की यात्रा के संदर्भ में हस्तिनापुर के साथ अनेक नगरों का उल्लेख हुआ है। महाभारत में काम्बोज, गंधार, वाहलिक, प्रज्ञाज्योतिषपुर, आसाम, अपरांत, पांड्य, सिंधु आदि अनेक देशों का वर्णन हुआ है। मौर्य युग। मौर्य युग में राजपथ सदैव स्वच्छ एवं साफ थे। कौटिल्य का कहना है कि मार्ग पर यदि कोई कूड़ा फेंकता था तो उसे अष्टमांश पर दंड में देना पड़ता था। यदि जल और कीचड़ फेंकता तो उसे चौथाई पर का दंड दिया जाता था। यदि राजमार्ग पर ये दोनों वस्तुएं फेंकी जाती थी तो उसे दुना दंड देना पड़ता था। पाशु न्यासे रथ्यायामश्च भागो दंडः पंकोदक सन्निरोधे पाद राजमार्गे द्विगुणः। अशोक के कलिंग पर आक्रमण किया था। इससे ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र कलिंग के मध्य मार्ग था। अशोक के लेख भारत के विभिन्न स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। ये विकसित भागों के परिचायक हैं। महाभारत से ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र जाने वाले मार्ग के मध्य में मथुरा, अयोध्या, कौशाम्बी आदि कई नगर पड़ते थे। उत्तरापथ का यह अति प्रसिद्ध मार्ग था। यह पश्चिमी सीमा प्रांत से होते हुए पाटलिपुत्र तक जाता था और पाटलिपुत्र से ताम्रलिप्ति तक जाता था। मैगस्थनीज के विद्वान से ज्ञात होता है कि सड़कों पर हर 10 विरामों के बाद दूरी दर्शक और मार्ग निर्देशक लगे होते थे। नंबर तीन, शुंग एवं सातवाहन युग। शुंग एवं सातवाहन युग में वणिक पथों का विस्तार हुआ। दक्षिणा पथ उत्तरा पथ से जोड़ दिया गया। संगम साहित्य में एक स्थल के सार्थवाह कोष्टक में मासातुवान का उल्लेख है। डॉक्टर मोती चंद के अनुसार पैठन कोष्टक में प्रतिष्ठान सातवाहन की राजधानी होकर एक मार्ग भड़ौच और उज्जैन जाता था। उज्जैन होकर तमिलनाडु के व्यापारी और यात्री काशी पहुँचते थे। मणि मेखलय में काशी के एक ब्राह्मण को अपनी पत्नी के साथ कन्याकुमारी की यात्रा का उल्लेख है। दिव्यप्पतिकाराम से कारम से ज्ञात होता है कि उत्तर भारत से माल से लदी हुई गाड़ियां दक्षिण भारत में आती थी तथा आने वाले माल पर मुहर होती थी। नाना घाट लेखों से ज्ञात होता है कि सातवाहनों के अधिकार में वह घाट आ गया था जिससे होकर जुन्नर वाली सड़क कोंकण को जाती थी। सातवाहनों की शक्ति के विकास होने से शीघ्र ही सातवाहन नरेश उज्जैन से पैठन तक की सड़क के स्वामी बन बैठे। समकालीन अभिलेखी तथा मौद्रिक साक्ष्यों से शक सातवाहन में व्यापारिक मार्गों तथा बंदरगाहों पर अधिकार स्थापना हेतु युद्ध हुए। मथुरा उज्जैन भड़ौच वाली सड़क पश्चिमी क्षत्रपों के अधीन थी। नंबर चार, कुषाण युग। इस युग में आंतरिक एवं बाह्य व्यापार अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंच गया था, सदैव व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ। बैक्ट्रियार के दक्षिणी द्वार से महापथ भारत को जाता था। हिंदू कुश और सिंधु नदी को पार करके यह रास्ता तक्षशिला पहुंचता था और वहां वह पाटलिपुत्र वाले महाजनपद से जा मिलता था। यह महाजनपद मथुरा में आकर दो शाखाओं में विभक्त हो जाता था। एक शाखा तो पटना होती हुई बंगाल के बंदरगाह को चली जाती थी और दूसरी शाखा उज्जैनी होती हुई पश्चिमी समुद्र तट पर भरू कक्ष के बंदरगाह को चली जाती थी। मोती चंद्र के अनुसार कुषाण युग में महापथ पर भी कुछ परिवर्तन हुए। इतिहास में सबसे पहली बार गंगा से मध्य एशिया तक जाता हुआ यह महापथ एक राजसत्ता के अधीन हो गया। इस महापथ का एक टुकड़ा कुषाणों की नई राजधानी पेशावर से होकर खैबर जाता था। नंबर पाँच, गुप्त काल। गुप्त युग भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस संस्कृति के संवाहक व्यापारी बौद्ध भिक्षु और ब्राह्मण पुरोहित थे जिन्होंने जल और स्थल मार्ग की अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए भी विदेशों से कभी संपर्क नहीं छोड़ा। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की दक्षिण भारतीय विजय ज्ञात होती है। दक्षिण कोसल, उड़ीसा, बिलासपुर, रायपुर और संभल और उसकी राजधानी श्रीपुर, कोष्टक में सिरपुर, महाकांतार, कोष्टक में पूर्वी गोंडवाना, एंडरपल्ली, कोष्टक में चीकाकोल के पास गंजाव जिले में, देवराष्ट्र, कोष्टक में झेलम मेल्लम चिली, विजयपाट्टम, गिरी कोट्टूर, कोष्टक में कोठूर गंजाम जिला, अवमुक्त पिष्टपुर, कोष्टक में पीठपुरम, कौराल, पीठपुरम के पास कोलुट की बे, पलक, कोष्टक में पलक्कड़, नेल्लोर जिला, कुस्थलपुर, कोष्टक में उत्तरी आर्काट में कुट्टल्लूर और कांची तक पहुंचकर उसकी सेनाओं ने विजय की। अतः उत्तर से दक्षिण तक का ऐसा मार्ग उस समय अवश्य रहा होगा जिससे होकर एक विशाल सेना जा सकी होगी। कालिदास ने राजा रघु की विजय बताई है। आज भोजों का राज्य भोजपुर, राज्य भोजपुर में भी एक मार्ग जाकर मिला था। उदयगिरी गुहा अभिलेख से चंद्रगुप्त द्वितीय की मालवा विजय ज्ञात होती है। यह पाटलिपुत्र से दक्षिण की ओर जाने वाले मार्ग को इंगित करता है। गुप्त युगीन उज्जैन भारत के अन्य व्यापारिक मार्गों से जुड़ी हुई थी। नंबर छह, हर्ष काल। हर्ष युगीन लगभग सभी नगर अनेक पथों और मार्गों से जुड़े थे। पाटलिपुत्र से भड़ोस तक राजकीय मार्ग था। पश्चिम में तक्षशिला से लेकर थानेश्वर, मथुरा, कौशाम्बी, काशी, पाटलिपुत्र आदि नगरों से होता हुआ राजपथ पूरब से ताम्रलिप्ति तक जाता था। इस संबंध में हिंसांग से विस्तृत जानकारी मिलती है। इस वृत्तांत से समकालीन व्यापारिक पथ के प्रसार की जानकारी मिलती है। नंबर चार, पूर्व मध्य युग। सम्राज्य कहा से ज्ञात होता है कि देश के प्रत्येक नगर विभिन्न मार्गों द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। व्यापारी समूहों में यात्रा करते थे और अपने अभिष्ट स्थानों पर पहुंचने में महीनों लगते थे। मगध से तिब्बत जाने का मार्ग भी मार्ग था। पश्चिमोत्तर प्रांत वाला व्यापारिक मार्ग अत्यंत प्रसिद्ध था। भारतीय व्यापारी तक्षशिला से हिंदू कुश लांग कर ईरान जाते थे जहां वे पारसिया होते हुए आक्सस घाटी में पहुंचते थे। यह मार्ग यूरोप की ओर जाता था। इब्न खुरताजबास ने पारसिया और सिंध को जोड़ने वाले पथ को बताया है। अलबुर्नी ने भारत के विभिन्न मार्गों का ब्यौरा दिया है। नंबर एक, एक मार्ग कन्नौज से प्रयाग और तत्पश्चात पूर्वी तट तक जाकर दक्षिण में कांजीवरम तक जाता था। नंबर दो, दूसरा मार्ग कन्नौज या बारी से वाराणसी और उसके बाद गंगा मुहाने तक जाता था। नंबर 3 द्वितीय पथ कन्नौज से लेकर पूरब में कामरूप और उत्तर में सीमावर्ती देश नेपाल और तिब्बत तक पहुंचता था। नंबर 4 चौथा मार्ग कन्नौज से दक्षिण की ओर जाकर दक्षिण तट पर स्थित वनवासी से संबंध था। नंबर 5 पंचम रास्ता कन्नौज से वाजान या नारायण तक और उसके बाद गुजरात की राजधानी तक जाता था। नंबर 6 छठा मार्ग मथुरा से धार तक जाता था। नंबर 7 सातवां पथ धार से उज्जैन तक जाता था। नंबर 8 आठवां पथ धार से होकर मंदगिरी तक गया था। नंबर 9 नवा पथ धार से पश्चिमी ओर सागर तटीय तान से संबद्ध था। नंबर 10 मार्ग बजान से काठियावाड़ दक्षिण तटीय सोमनाथ तक जुड़ा था। नंबर 11 ग्यारहवां पथ अनहिला पाटन से बम्बई के पश्चिमी तट तान तक जाता था। नंबर 12 बारहवां पथ बाजान से भारी भटिंडा होते हुए सिंधु नदी के मुहाने पर स्थित लोहरानी कराची तक जुड़ा था। नंबर 13 तेरहवां रास्ता कन्नौज से कश्मीर तक जाता था। नंबर 14 चौदहवां पथ कन्नौज से पानीपत अटक काबुल और गजन तक जाता था। नंबर 15 पंद्रहवां मार्ग ब्रह्मान से अधिष्ठान पहुंचता था। 16वां पथ मकरान स्थित तीज से सेतु बंध तक गया था। अलबिरनी के इस वर्णन से 11वीं सदी के प्रसिद्ध विभिन्न पथों का ज्ञान मिलता है। 12वीं शताब्दी के हेमचंद्र ने अनेक वणिक पथों का वर्णन किया है। शंकु पथ, यह पहाड़ी मार्ग अत्यंत कठिन था। इस पर लोहे की कीलों को ठोक कर चढ़ा जाता था। वहाँ से यह मार्ग कैस्पियन सागर होता हुआ काला सागर होते हुए यूरोप तक गया था। इस मार्ग का पूर्वी भाग तक्षशिला होकर हस्तिनापुर, कन्याकुब्ज, प्रयाग और पाटलिपुत्र को जोड़ता हुआ ताम्रलिप्ति तक जाता था। इस मुख्य पथ के अलावा कांतार पथ, अस्थल पथ, अज पथ और बरी पथ का भी उल्लेख हेमचंद्र ने किया है। जल मार्ग, प्राचीन भारतीय व्यापारियों ने जल मार्ग का भी उपयोग किया था। भारत में छोटी बड़ी नदियों के माध्यम से व्यापारी अपने माल को गंतव्य स्थान तक ले जाने में सफल होते थे। वणिक प्रागैतिहासिक युग में पंजाब की सिंधु, दितस्ता, अश्वनी, असिकनी, पुरसड़ी, बिपाशा, शतदरु एवं सरस्वती आदि, गंगा, यमुना, सरयू, गोमती आदि उत्तर भारत की नदियों, आसाम में ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा आदि दक्षिण भारत की नदियों का उपयोग करते रहे होंगे। नंबर 1 पूर्व वैदिक युग। पूर्व वैदिक युग में सामुद्रिक व्यापार का प्रचलन प्रतीत होता है। ऋग्वेद में समुद्र में टूटे भुज्जू के पोत का उल्लेख हुआ है। भुज्जुम अस्तंत सतारित्रो नावम अतास्ति वांसम। ऋग्वेद में समुद्र से निकाले मोती व्यापार का विवरण मिलता है। नंबर 2 उत्तर वैदिक युग। अथर्ववेद से सामुद्रिक व्यापार के विवरण मिलते हैं। नंबर 3 बौद्ध युग। बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात होता है कि भारतीय व्यापारी ताम्रपर्णी और सुवर्ण भूमि के साथ साथ भिगु कच्छ से होते हुए सुमेर और बेबीलोन तक जाते थे। व्यापारी सामान्यतः नदियों से समुद्र तक जाते थे। जातकों से ज्ञात होता है कि एक वड़ीस ने पोत बेच दिया था, जिसे एक युवक ने खरीद कर 2 लाख मुद्राओं का लाभ उठाया था। नदियों एवं खाड़ियों के ऊपर पुलों का निर्माण किया जाता था, जिससे सामान सुगमता से पार किया जा सकता था। नंबर 4 मौर्य युग से गुप्त काल तक। मौर्य युग में समुद्र तथा नदी मार्गों का प्रचलन था। कौटिल्य के अनुसार समुद्र तथा नदियों की देखरेख के लिए नवाध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी। जल मार्ग के उपयोग करने वालों से कर ग्रहण किया जाता था तथा उन्हें यातायात की सुविधा दी जाती थी। इस युग में समुद्र से मछलियां तथा शंख निकाले जाते थे। नवाध्यक्ष समुद्र श्यांग नदी, मुक्तर, प्राचारान, देव सरी, सरोवी सरो नदी, तारांस्व, यदिस्वेचत। मौर्य राजाओं का संबंध पश्चिमी तथा कतिपय पूर्वी देशों के साथ था। इसमें सामुद्रिक मार्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पहली सदी ईस्वी में 3 महीनों में जहाज सामान्यतः मिस्र से भारत पहुँचता था। भारतीय व्यापारी रोम एवं यूनान तक जाते तथा वहाँ के यात्री भारत आते थे। इस संदर्भ में हिप्पलस नामक यूनानी यात्री का महत्वपूर्ण योगदान था। उसने हिंद महासागर में चलने वाली मानसून हवाओं को पता लगाया था तथा उसके अनुरूप पोतों को चलाने की सलाह दी थी। रोम के साथ समुद्री व्यापार की पुष्टि रोम की उन मुद्राओं से होती है जो दक्षिण भारत से मिली है। अधिक मेरु के उत्खनन से भी इस पर प्रकाश पड़ता है। मनु ने पोतों और नावों का वर्णन किया है जो व्यापारिक वस्तुएं दूर दूर तक ले जाती थी। समुद्र यात्री को मनु ने समुद्र यायी कहा है। इस टैबो के वर्णन से ज्ञात होता है कि 120 भारतीय जलपोतों को उसने ईरान और अरब देशों से होकर मिस्र की ओर जाते हुए देखा था। कुषाणों एवं सातवाहन युग में सामुद्रिक व्यापार का अधिक विकास हुआ। सातवाहन नरेश सातकर्णी के सिक्कों पर दो मस्तूलों वाले जहाज का अंकन है, उसी के साथ मछली तथा शंख के भी अंकन हुए हैं। ये प्रतीक सातवाहन युगीन सामुद्रिक व्यापार के द्योतक हैं। इस युग में चीन तथा स्वर्णद्वीप जैसे पूर्वी देशों के साथ भारत के सामुद्रिक व्यापार संबंध स्थापित हुए थे। गुप्त युग में जलमार्ग का अधिक प्रसार हुआ। आंतरिक व्यापार में नदियों का प्रयोग किया गया। रघुवंश से ज्ञात होता है कि व्यापारियों के कारवां पहाड़ी मार्ग में इस प्रकार चलते थे जैसे वे उनके भवन हों। नदियों पर ऐसे बिहरते थे मानो वे कूप हों, तथा वनों के मार्ग में ऐसे जाते थे जैसे वे वन न होकर उपवन हों। बड़े बड़े जलपोत सागरों में चलते थे। कल्याणी सुरपारक और या भिगकच्छ से प्रारंभ होकर यह जलमार्ग फारस की खाड़ी तक पहुँचता था और वहाँ से मिस्र के साथ जुड़ा हुआ था। आसियन ने चीन तथा भारत के संबंध सामुद्रिक मार्ग के माध्यम से बताए हैं। बाली, सुमात्रा, जावा, स्वर्ण भूमि आदि के साथ सामुद्रिक व्यापार भारत का था। त्वांग च्वांग ने मलकुट बंदरगाह का उल्लेख किया है जिसके माध्यम से लंका तथा अन्य देशों के साथ व्यापार किया जाता था। पूर्व मध्य युग में जलमार्ग का महत्व पूर्व युगीन जैसा बना रहा। मिस्र से होकर जलपोत भारत आते थे और भारत से चीन और पूर्वी द्वीप समूह तक जाया करते थे। अलम सूदी ने लिखा है कि भारत के पोत बस्त्रा, सिरफ, ओमन, जावा और चंपा से होकर कुनफू, कोष्टक में कैंटन तक जाते थे। सम्राज्यकाहा से मालूम होता है कि सुबदन नामक पोत वाहक चीन से स्वर्णद्वीप होते हुए देवपुर पहुँचा था। प्राचीन भारत के प्रमुख नगर एवं बाजार। बौद्ध कालीन भारत में उत्तरी कृष परिमार्जित मृद भांडों एवं लौह आविष्कार के साथ नगरों का उद्भव हो गया था। ये नगर व्यापारिक मार्गों द्वारा एक दूसरों से संबंध थे। अब हम प्रमुख नगरों का सर्वेक्षण प्रस्तुत कर सकते हैं। नंबर एक, वाराणसी। यह काशी की प्राचीन राजधानी थी। जातकों में इसे प्रधान व्यापारिक नगर बताया गया है। धम्मपद अट्ठ कथा में इसका संबंध तक्षशिला से बताया गया है। दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि उत्तरापथ के सार्थ अक्सर वाराणसी आते थे। जातकों में इसके व्यापारिक संबंध उज्जैनी के साथ बताए गए हैं। वाराणसी का अधिकांश व्यापार गंगा से होता था। नंबर दो, कौशाम्बी। सार्थों का यह प्रधान अड्डा था और यहाँ से कोसल और मगध को बराबर रास्ते चला करते थे। सूत्र निपात के अनुसार महिष्मति होकर दक्षिण पथ वाला रास्ता कौशाम्बी होकर जाता था। यह प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी थी। नंबर तीन, मथुरा। यह प्राचीन सूरसेन जनपद की राजधानी थी। मथुरा का तक्षशिला के साथ घनिष्ठ संबंध था। बौद्ध साहित्य में मथुरा से राजगृह तक महाजनपद का उल्लेख है। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह प्रमुख केंद्र था। शक तथा कुषाणों का प्रभुत्व इस पर रहा। नंबर चार, साकल। साकल का समीकरण आधुनिक सियालकोट से किया गया है। प्राचीन समय में यह मद्रों की राजधानी थी। मिलिंद बंधों में इस नगर को पुट भेदन कहा गया है। पुट भेदन में बाहर से थोक माल के मुहर बंद गठरियां उतरती थी और वहां गठरियां तोड़कर उनका माल फूटकर व्यापारियों के साथ बेच दिया जाता था। महाजनपद तक्षशिला से साकल पठानकोट होता हुआ रोहतक पहुंचता था। रोहतक से होकर प्राचीन महापथ मथुरा तक जाता था। नंबर पाँच, तक्षशिला। यह गांधार की राजधानी थी। पश्चिमोत्तर भारत का प्रमुख नगर था। साहित्यिक साक्ष्यों से हमें स्पष्ट हो जाता है कि तक्षशिला होकर महाजनपद काशी और मिथिला तक जाता था। जातकों से विदित होता है कि बनारस तक्षशिला का रास्ता घने जंगलों से होकर जाता था। तक्षशिला में भारतीय एवं विदेशी व्यापारियों का मिलन केंद्र था। बौद्ध साहित्य से ज्ञात होता है कि बनारस, श्रावस्ती और सोरेप्य के व्यापारी तक्षशिला में व्यापार के लिए आते थे। रामायण तथा मूल सर्वास्तिवादियों की विनय से ज्ञात होता है कि तक्षशिला से मथुरा तक स्थल मार्ग था। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व व्यापारिक संगठनों की पुष्टि सिक्कों से होती थी। कुछ तांबे के चौकोर सिक्कों पर ब्राह्मी अक्षरों में लेख नैगम पंच नैगम आदि मिले हैं। नंबर 6 श्रावस्ती। इसकी पहचान गोंडा जिले के सहेठ महेठ से की जाती है। प्राचीन काल में एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगरी थी। बौद्ध साहित्य से ज्ञात होता है कि यहाँ के प्रसिद्ध सेठ अनाथ पिंडिक बुद्ध के अनन्य सेवक थे। नगर के चारों फाटकों पर चुंगी घर थे। पर्यावरण में स्थल मार्ग से इसका संबंध राजगृह से बताया गया है। श्रावस्ती से साकेत होकर कौशाम्बी को भी रास्ता जाता था। पाली साहित्य में भिन्न भिन्न नगरों से श्रावस्ती की दूरी दी गई है, जिससे इसका व्यापारिक महत्व प्रकट होता है। नंबर 7 उज्जैनी। उज्जैन प्राचीन अवंती की राजधानी थी। प्राचीन पश्चिमी भारत का महत्वपूर्ण नगर था। प्राचीन महापथ की एक शाखा भरु कच्छ और सुपारक के प्राचीन बंदरगाहों से होती हुई उज्जैन के रास्ते मथुरा पहुंचती थी। बौद्ध साहित्य में इसके संबंध पैठन महिस्मृति गोंडस विदिशा और कौशाम्बी के साथ बताए गए हैं। यहां से प्राप्त तांबे की कुछ मुद्राओं पर अजूनी लेख मिला है। नंबर 8 कन्नौज। पूर्व मध्ययुगीन भारत में कन्नौज महत्वपूर्ण नगरी था। अलबुर्नी कन्नौज के संबंध भारत के विभिन्न भागों से बताते हैं। नंबर 9 वैशाली। यह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिच्छवियों की राजधानी थी। महाजनपद इसके संबंध वाराणसी उवकचेक और श्रावस्ती के साथ थे। नंबर 10 ताम्रलिप्ति। बंगाल के गंगा मुहाने पर प्रमुख बंदरगाह था। इसका व्यापारिक संबंध जल एवं थल मार्गों से था। महाजनपद की एक शाखा पटना होती हुई ताम्रलिप्ति के बंदरगाह तक चली गई थी। नंबर 11 पाटलिपुत्र। यह मगध की राजधानी थी। बौद्ध साहित्य से ज्ञात होता है कि व्यापारिक मार्गों से इसके संबंध अन्य नगरों से स्थापित थे। प्राचीन भारत का सबसे प्रमुख पथ उत्तरी महापथ था। यह महापथ किसी समय का कैस्पियन समुद्र से चीन तक एवं वाहिक से पाटलिपुत्र ताम्रलिप्ति तक था। नंबर 12 चंपा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अंग जनपद की राजधानी थी। बौद्ध साहित्य के अनुसार प्रमुख व्यापारिक नगर था। श्रावस्ती से आने वाला महाजनपद वैशाली होते हुए चंपा जाता था। चंपा से एक मार्ग ताम्रलिप्ति तक गया था। नंबर 13 कल्याण। पेरिप्लस में इसे कल्लियेना कहा गया है। यह बंबई के पास उल्हास नदी पर स्थित है। यह सहाद्री के निकट है और यहाँ से दो रास्ते, एक नासिक की ओर और दूसरा पूना की ओर जाते थे। कन्हेरी और जुन्नर अभिलेखों से इसके व्यापारिक महत्व का पता चलता है। यह एक प्रमुख बंदरगाह भी था। कौश मौसी के अनुसार भारत के 6 बड़े बाजारों में से एक था। वहाँ कांसे, काली लकड़ी और कपड़े का व्यापार होता था। नंबर 14 प्रतिष्ठान, इसे पैठन भी कहते हैं। हैदराबाद प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के उत्तरी किनारे पर था। इस पर प्रभुत्व स्थापन के लिए शक सातवाहनों में संघर्ष हुआ। इसका व्यापारिक संबंध उज्जैन और विदिशा के साथ था। नंबर 15 मरुकक्ष। पेरिप्लस में दक्षिणा बसेस के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में मरुकक्ष कोष्टक में भड़ौच को देरी गाजा कहा गया है। भड़ौच से उज्जैन की सड़क नर्मदा की उपजाऊ घाटी से जाती थी। वहाँ से यह रास्ता पंजाब होकर काबुल पहुँचता था। पश्चिमी भारतीय बंदरगाहों से भड़ौच का महत्वपूर्ण स्थान था। नंबर 16 मदुरा। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में मदुरा का एक प्रसिद्ध बाजार था। शिल्प पपीकारम में यहाँ के जवाहरियों का उल्लेख हुआ है। यहाँ पर वस्त्रों तथा अन्य बाजार का वर्णन मिलता है। नंबर 7 कोंगो देश के नगर। तोंडई, मुरचिरी, फयूर और वक्कर आदि प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र थे। नंबर 18 कांची। चौल प्रदेश में कांची एक प्रसिद्ध नगर था। नंबर 19 सोपारा। पश्चिम समुद्र तटी एक प्रमुख बंदरगाह था। पेरिप्लस में सुपर कहा गया है। टालमी ने सुपारा कहा है। पेरिप्लस और हालमी के अनुसार सोपारा के बंदरगाह से विदेशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। नंबर 20 कावेरीपट्टनम, कावेरी के उत्तरी किनारे पर कावेरीपट्टनम का बंदरगाह था। नगर दो मार्गों में विभक्त था। शिल्प पद्धतिकारम में इसे पुहार कहा गया है। इसमें इसकी धन संपदा का स्वाभाविक वर्णन मिलता है।